कितना है प्यारा
तारीख है 18 नवंबर और अगर ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज 18 नवंबर है और हिंदू कैलेंडर में तिथियां होती है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कौन सा दिन है? हाँ, तिथि तिथि की बात आती है ना। कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको देव दिवाली भी कहते हैं और जिसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि कैलेंडर में हर त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 दिन मनाया जाता है आजकल, और उसका कारण क्या होता है, जो तिथियां जो होती है उसके कारण ये 2 दिन हो जाता है। जैसे कि कहा कि पूर्णिमा आज भी लोग मनाएंगे और आने वाले कल माना 19 नवंबर को भी मनाएंगे, और उसका कारण क्या है कि वो जो पूर्णिमा की तिथि है जस्ट अभी 12 बजे के आसपास शुरू हुई है और कल दोपहर तक रहेगी, तो आज भी पूर्णिमा कहलाएगी और कल भी पूर्णिमा कहलाएगी, लेकिन पूर्णिमा का चांद तो आज हो जाएगा रात को, है ना। लेकिन तिथि को पकड़ के 2-2 दिन चलता है। तो पूर्णिमा के पहले होती है चतुर्दशी, तो चूंकि पूर्णिमा को ही 2 दिन लिया तो चतुर्दशी भी 2 दिन चली, है ना। बताई तो रहे अभी। अभी शुरुआत कर रहे हैं ना हम तो ये जो देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जिसको दिवाली को हमने 15 दिन पहले भी मनाया और वो 5 दिन चलती है हमारी दिवाली, जिसमें धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होती है, वो 5 दिन। और ये वाले जो दिन है वो भी कार्तिक मास में है और ये भी कार्तिक मास में है, लेकिन वो दिवाली थी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, और जो देव दीपावली होती है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। वो दिवाली के आगे देव शब्द नहीं है, अर्थात वो फिर किसकी दिवाली है? मनुष्यों की दिवाली है। क्लियर हो रही बात? इस शब्द के इस दीपावली के सामने क्या नाम लगा हुआ है? देव। अर्थात ही ये दीपावली वो दीपावली है जो देवताओं के द्वारा मनाई गई है, और वो अमावस वाली जो दीपावली है वो मनुष्यों के द्वारा मनाई गई है। कौन से मनुष्यों के द्वारा? जो मनुष्य से देव बनने जा रहे हैं, जो मनुष्य से देव बनने जा रहे हैं, वो मनुष्य जो अंधकार में है, जो हमने भक्ति मार्ग में क्या गाया, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युम मा अमृतम गमय। तो जो गुहार हमने द्वापर से लगाई थी वो परमात्मा धरती पर आते ही हमें वो रास्ता देना आरंभ कर देते हैं, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर लेकर चलना आरंभ कर देते हैं, अर्थात हमारा आत्मा रूपी दीवा जगना आरंभ करते हैं। लेकिन है अभी भी पूरे संसार में अंधकार, अज्ञान का अंधकार, और अज्ञान का अंधकार है इसलिए दीप से दीप जगाकर रोशनी करने की आवश्यकता है। तब कहा वो दिवाली है वो मनुष्य जिनको परमात्मा ने आकर जगाया है। दीवा जो बुझा पड़ा था द्वापर से, उसको आकर जगाया, क्योंकि बाबा कहते सारे जो भी त्योहार है वो संगम की यादगारें हैं, ऐसे ही कहते ना बाबा। तो बाबा आए हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले। जो ये अशरीर सत्य है, ये जो शरीर असत्य है, इसको ही मैं समझ के बैठे थे, लेकिन इस असत्य से निकालकर सत्य आत्मा जो अविनाशी है, तो असत्य से सत्य की ओर लेके चले। ये दीवा जो बुझा हुआ था उसको जगाया, रोशन किया, ज्ञान की रोशनी प्रदान की। और इसका जो डर है सदा मरने का, जब ज्ञान मिल गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न इसको कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि इसको जला सकती है, न वायु इसको उड़ा सकती है, सुखा सकती है, न पानी इसको गीला कर सकता है, अर्थात प्रकृति के वो पांचों तत्व जो इस विनाशी शरीर को नष्ट कर सकते हैं, वो प्रकृति के पांचों तत्व उस अजर अमर आत्मा को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तब कहा वो दीपावली परमात्मा जब आते हैं, ज्ञान देते हैं, दीवा जगता है, फिर हम दीप से दीप जगाते चलते हैं। तो जरूरत है, अंधकार है, रोशनी की जरूरत है, इसलिए वो दीवे जल रहे हैं। तो इस पथ पर चलते चलते कहा ना, क्या होना चाहिए हमें? हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक दिन तो आएगा ना हम देवता बनेंगे, कि सब आत्माओं की ज्योति जगी हुई रहेगी, और आत्मा पूरी जगी हुई रहेगी का क्या अर्थ है? आज हम आत्माओं के जो वैल्यूज हैं, जो ओरिजिनल संस्कार हैं, खुशी प्रेम शक्ति आनंद है मेरे, पर अनुभव में मेहनत तो कर रहे हैं ना, लेकिन रोज रोज की प्रैक्टिस वो जो हमारी मेहनत है वो कम होती जा रही है। पहले समझो बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी शांति में रहने में, अब कम लगती है। पहले पूरा ही 24 घंटा अशांत रहते थे, अब कुछ पल तो शांत रहते, भले कुछ पल अशांत हो जाते लेकिन कुछ पल तो हम शांत रह सकते हैं। तो दिनों दिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, डेफिनेटली हमारी यात्रा ही है संपन्नता की ओर, अर्थात ही मनुष्य से देवता, अर्थात ही डिस्चार्ज बैटरी से फुल चार्ज बैटरी की ओर बढ़ना। तो फुल चार्ज बैटरी की ओर हम बढ़ना आरंभ करते हैं और वो चार्जिंग होते 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 हम अभी फुल चार्ज होने से पहले उसके, जिसको कहते हैं इट इज अबाउट टू चार्ज फुल्ली, अभी हुई नहीं, बस अभी थोड़ा और बाकी है। तो कई बार वो होता है ना, कहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं ना तो समाप्ति के पहले ही थोड़े अलबेले हो जाते हैं, हमको लगता है बस हो गया ना अभी, तो थोड़े से क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते। कहने का तात्पर्य, जब तक फुल्ली चार्ज नहीं होते हैं तब तक हमारे में कमियां कमजोरियां मौजूद रहती हैं। और इसीलिए भक्ति मार्ग में जो देव दीपावली मनाते हैं उसमें बताते हैं कि इस देव दीपावली को कि देवताओं की दिवाली है, कि स्वयं देवताएं स्वर्ग से धरती पर आए और आकर के किस खुशी में दीप जलाए, क्योंकि संपन्नता प्राप्त की। कौन सी संपन्नता, तो कहानी बताते हैं कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जो देवों को बहुत परेशान कर रहा था। देवों ने अपने सारे प्रयास कर डाले लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही थी, तो देवताओं ने जाके विष्णु जी को रिक्वेस्ट की और फिर विष्णु जी ने जाके पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास गए और फिर शिव के पास जाना पड़ा। और फिर शिव ने उस त्रिपुरासुर नामक राक्षस को क्या किया, खत्म किया। और खत्म किया तो वो संपन्नता प्राप्त की, अर्थात दैत्यों के जो उनके ऊपर सफरिंग्स आ रही थी, जो पीड़ाएं हो रही थी दैत्यों के कारण से, उनसे वो फुल्ली क्या हो गए, फ्री हो गए, मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता की खुशी, क्योंकि एकमात्र क्योंकि हम संपन्नता की ओर तो बढ़ ही रहे थे, कुछ एक कमी कमजोरियां है जो हमको बीच बीच में संपन्नता की ओर बढ़ने में रोक रही थी, और उस जो कुछ एक कमियां थी उसको शिव जी ने आके हमारी मदद की और खत्म की, तो हम क्या हो गए, फुल चार्ज स्टेट में आ गए। और तब कहा कि देवताएं ऊपर से आए स्वर्ग से धरती पर, हाँ वो तो भक्ति मार्ग में तो सब क्या हो गया है, जो मिसिंग लिंक भरपाई नहीं होने के कारण इधर से उधर जुड़ गया है। वास्तव में तो बाबा कहते धरती पे ही स्वर्ग है, हाँ कब, जब देवताएं होते हैं, लेकिन वो स्वर्ग कब आता है, जब आत्माएं यहां से संपन्न होकर परम धाम घर में जाती है और फिर उस घर से चमकती हुई आत्माएं नीचे उतरती है धरती पर, और उस धरती को कहते हैं स्वर्ग। तो जो बाबा कहते हैं कि जब वहां पर आप दीपावली, वहां पर भी हर दिन दीपावली होगी, क्यों, क्योंकि हर आत्मा जगी हुई ज्योत है। बाबा कहते हैं ना वहां पे हर घर अपने आप में एक चैतन्य मंदिर होगा, क्योंकि उस चैतन्य मंदिर में कौन बैठा हुआ है, चैतन्य देवता बैठा हुआ है। या तो फिर भी हम स्थूल मंदिर बनाते हैं, स्थूल मूर्ति जाके बिठाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, अपना चैतन्य देवता बैठा होगा, जो सचमुच वो जगा हुआ जो दीपक है, 100% चार्ज जो बैटरी है, उसमें से जो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे होंगे, वाइब्रेट हो रहे होंगे, रेडिएट हो रहे होंगे, उसके प्रकंपन चारों ओर फैल रहे होंगे। अब हमको समझना क्या है कि कौन है त्रिपुरासुर राक्षस जो हमको तंग करता है। हम भट्टियां तो इसीलिए मिली है ना करने के लिए हमें, जब से हम ज्ञान में आए तब से हमारी यात्रा चल पड़ी कि हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज को बिना मेहनत के अनुभव करें, या यूं कहें कि हम सदा ही अपने उस संपूर्ण स्थिति में स्थित रहे कि वो हम अनुभव तो क्या करें, हमसे रेडिएट होते रहे, यही लक्ष्य है हमारा और उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर ये जो कहा त्रिपुरासुर राक्षस बीच में आके परेशान करता है वो कौन सा है, तो कहते त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसको तो कहते कार्तिकेय ने मार दिया था, और कार्तिकेय कौन है, शिव पार्वती का बेटा है, और कार्तिकेय को क्या कहते हैं, कौन सा देवता कहते हैं, युद्ध का देवता कहते हैं। अर्थात ही शिव पार्वती का बेटा मतलब ही क्या हुआ कि जब हम आत्माएं ही पार्वती है परमात्मा शिव, जब हम आत्माएं परमात्मा पिता के कनेक्शन में आ जाती हैं, उनसे ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें समझ में आता है हमारी ये कमियां हैं जिनको हम खूबियां समझ रहे थे। हम खूबियां समझते थे ना, गुस्से को शस्त्र बना के रखा था, नफरत को शस्त्र बना के रखा था, फलाना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसे प्यार करूंगा क्या मैं, तो नफरत तो उसको शस्त्र बना के रखा था। तो जिन चीजों को हमने खूबियां समझ के रखी थी, लेकिन बाबा के कनेक्शन में आने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद, उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के बाद, वो जिनको खूबियां समझा था वो कमियां है वो रियलाइज भी किया, और साथ साथ कनेक्शन जोड़ के वो जो बाबा कहते हैं ना, बाबा से जब योग लगाओगे तो पाप भस्म होते जाते हैं, तो उनको खत्म भी किया। लेकिन जैसे कहते हैं कि लोहे की जंजीरें तो फटाफट तोड़ डाली, लेकिन फिर सोने की जंजीरों में जकड़ के रह जाते हैं। तो त्रिपुरासुर को तो मार दिया, लेकिन उसके जो तीन बच्चे थे जिसको ही कहा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ऐसे करके तीन उसके बच्चे थे, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे पिता को मार दिया गया है, तो उन बच्चों में वो वैर लेने की भावना जागी कि हम इसका वैर लेके रखेंगे, और उस वैर लेने के लिए उन्होंने क्या किया, तपस्या की, क्योंकि उसने भी, उनके पिताजी त्रिपुरासुर ने भी क्या की थी, खूब तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान, ऐसे ही बताते हैं ना, तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, तो इन बच्चों ने भी अपने पिता को फॉलो किया कि तपस्या करेंगे ब्रह्मा की और उनको खुश करेंगे। खुश किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए, उन्होंने कहा हमारे लिए तीन पुर बना दीजिए, जिसको ये कहा त्रिपुर, त्रिपुर माना तीन पुर, और पुर माना जयपुर, नागपुर, कानपुर, नगर है ना, क्या है, तीन नगर बना दीजिए हमारे लिए, जिस तीन नगरों में, और वो मोबाइल हो गए माना एक जगह पे स्थिर वाले नहीं, और वो नगर माना समझ सकते ना, नगर कितने विशाल होते हैं, तीन नगरों का निर्माण कर दीजिए जहां पे हम रहेंगे और अपने तरीके से जिएंगे। तो माना इमॉर्टल होना चाहते थे, अमर रहना चाहते थे, क्योंकि पिता को तो मार दिया, अब हम अमर रहना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो कोई नहीं रह सकता है, तो उसके बदले में फिर ये वर मांगा कि ठीक है हमें से तीन नगरी बना के दे दो, वर्षों तक हम उसमें एंजॉय करेंगे रहेंगे, और चूंकि कहा अमरता तो किसी को मिलती नहीं, एक दिन मरना होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है उस हजारों वर्षों तक हम उसमें राज्य करें और फिर जाकर के वो तीनों पूरियां जब एक सीध में आ जाए, क्योंकि मोबाइल है हमारा घूम रही है आकाश में, तो उनका तीनों का एक सीध में आना, ये संयोग भी तो बनना चाहिए ना। तो जब ये तीनों एक सीध में आएगी और इसको मारने वाला जो होगा वो एक एरो से ही मार के खत्म करे, तब खत्म होना चाहिए। तो ये कंडीशन रख दी उन्होंने। तो ये तीन पुर कौन कंडीशन है बताइए अभी। ये हमारी कहानियां है, मैं, मेरा और तेरा, मैं, मेरा और तेरा, ये तीन पुरियां हैं। इसमें कौन, मन इधर ही तो घूम रहा होता है, मन इन तीन पुरों में ही घूमता रहता है। आज भी चाहे हम ब्राह्मण बन गए हैं, जो अज्ञानी है, आज भल हम उनके साथ कंपैरिजन अपनी नहीं करते होंगे, उनके साथ हम कंपटीशन नहीं करते होंगे, उनके साथ क्रिटिसिज्म नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी इतनी तो समझ हमें आई है कि हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है और उन्होंने अभी ये पता नहीं उनसे क्या कंपटीशन करना। वैसे भी कहते हैं पहलवान पहलवान के साथ ही लड़ाई में अपनी शान समझता है ना। एक पहलवान को एक मच्छर के साथ लड़ने के लिए बोल दो तो उसकी उसमें शान नहीं होती तो हम भले अज्ञानियों के साथ अब कंपैरिजन नहीं करते होंगे, हम भले अज्ञानियों के साथ अब कंपटीशन में नहीं आते होंगे, अज्ञानियों को क्रिटिसाइज नहीं करते होंगे, लेकिन अब अपने ही ब्राह्मण परिवार के अंदर हम अपने आप को चेक करते जाएं, हम क्या कंपेयर नहीं करते हैं, हम क्या कंपटीशन में नहीं आते हैं, हम क्या क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, चेक करना है। ये भट्टी चेकिंग के लिए मिलती है। ये जो आपको इतना समय दिया जा रहा था, आप चार धामों की यात्रा करो, क्लास के समय तो बहुत कम रखे गए, बहुत कम रखा गया ना, योग के लिए बहुत समय दिया, क्योंकि हर आत्मा ने खुद की चेकिंग करनी है। ज्ञान तो आपके कानों में अंदर जाएगा, लेकिन कौन का ज्ञान दूसरा सुनाएगा, आप सुन लोगे, लेकिन चेकिंग कौन करेगा खुद की, खुद ने ही तो करनी है ना। और खुद की चेकिंग आप कर सको उसके लिए इतना सारा समय दिया जा रहा था कि मैं जो हमारा पहले अज्ञान काल में जो थे हम, तो मिरर के सामने जाके इसको मैं बोलते थे, तो बाबा ने आके कहा ये मैं नहीं है, ये तो मैं का रथ है, मैं तो आत्मा है। तो ये समझ भले आ गई है, लेकिन अब ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच में मैं कौन होता है, आत्मा होती है, मैं होती है, मैं आत्मा, फिर वही आ जाता है, मैं 25 साल वाला, मैं 20 साल वाला, ये 5 साल वाला, ये घर में रहने वाला, ये सेंटर में रहने वाला, मैं समर्पित और ये बाहर वाला, आती है बातें। सेंटर पे तो मेरे को इतना सम्मान दिया जाता है, इनको तो कोई, तो कंपैरिजन चल रहा है ना। तो मैं आत्मा हूं अभी भी, क्या उसमें टिकी हूं मैं, टिकी हूं मैं अभी भी, ये चेकिंग करना है। तो कम, तो ये मैं हो गया, फिर मेरा, इसको मैं समझा और फिर इसके द्वारा जो जो हासिल किया उसको मेरा बोलते गए, डिग्री मेरी, ये सब मेरा 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 करते गए ना उसको। तो पावर एंड पोजीशंस, जबकि बाबा क्या कहते हैं, मेरा तो क्या है, मैं आत्म स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मेरा तो गुण ये है, मेरी रियल प्रॉपर्टी, मेरी रियल पावर एंड पोजीशन तो मेरा ज्ञान, मेरा वर्चुअल्स, मेरे पावर्स जो आत्मा में निहित है, जिसको हम अज्ञान में भूल चुके थे, जो बाबा ने आके मुझे याद दिलाए। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ रहते हम मेरा किसको कहते रहते हैं। फिर है तेरा, कि जब बाबा ने कहा सब आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है, जाति के आधार पे भी कहो, चाहे वो धनी है, चाहे वो गरीब है, रंग के आधार पे कहो, चाहे गोरा है, चाहे काला है, आयु के आधार से कहो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पढ़ाई के आधार से कहो, शिक्षित है, अशिक्षित है, व्हाटएवर, सब क्या है? आत्मा है। और चूंकि सब आत्मा है, सब मेरे हैं, तेरा किधर हो गया? और जब सब मेरे हैं, अर्थात सब मेरे का मतलब ये सब आत्माएं हैं और सब एक ही पिता के हम संतान हैं। और जैसे जब एक पिता के संतान होते हैं तो परिवार के अंदर वो अपनापन होता है, ये मेरे अपने ही तो है। जैसे ब्रिजमन भाई कह रहे थे ना कि सेंटर के अंदर एक भाई अगर एक बहन कुछ कर देता है तो उससे बदनाम कौन होता है, और इसलिए चूंकि वो हमारे सेंटर का है तो वो अपनापन रख के उसको हमें करेक्शन देके, क्योंकि उसकी गलती हमारी गलती मानी जाएगी ना। परिवार में भी यही होता है ना, कुछ भी गड़बड़ अगर बच्चे ने की है, हम कोशिश करेंगे बच्चे को समझाकर वो बात अंदर तक ही खत्म हो जाए, बाहर नहीं जाए, ये कोशिश होती है परिवार की, जिसको ही कहेंगे अपनापन। लेकिन क्या अभी हमारे में वो अपनापन आया है सर्व आत्माओं के प्रति? आया है? ये हमें अपनी चेकिंग करना है। हम अभी तक हमारा मन इन तीन पुरों में घूम रहा है और अपनी ताकत से संभव ही नहीं हो पा रहा है कि हम इससे छूट सके। तब कहा शिव जी की मदद ले गए कि कहा जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे, और वो तीनों एक सीध में तभी आएंगे, तो जिसके लिए बताया कि वो उठाया धनुष, और वो जब तीनों एक सीध में आए तब उसको धनुष बाण चलाया, और वो जो धनुष जो बाण थी उसकी जो नोक थी, वो नोक में अग्नि थी, और जैसे ही वहां पे उन पुरों को वो तीर जाके छुआ वो भस्म हो गए। ये किस बात का प्रतीक है? जब तक हम ऐसी भट्टियां नहीं करेंगे कि जहां पर हम अपने माइंड को फुल्ली फोकस नहीं करेंगे आत्मा पर, और इसीलिए हमने यहां पर ज्यादा कमेंट्रियां भी नहीं रखी थी कि कोई आए और सामने से आपको कमेंट्री कराए। एक घंटा सुबह का आधा घंटा हमने फ्री छोड़ा था आपको कि आप स्वयं के रीति से अपने मन और बुद्धि को आत्मा पर केंद्रित करो। जब आत्मा पर केंद्रित हो जाता है मन बुद्धि, तब ये मन बुद्धि को, ये जो मैं मेरा तेरा का मैं भेद कर रही थी, तब वो रियलाइज होता है मैं कर क्या रही हूं, इट इज नॉट राइट। वो उस समय रियलाइजेशन होती है। जब तक फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा योग, तब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी। हम तो सिर्फ यही बता रहे हैं अपने आप को, योग कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। देखो ना, साक्षी होकर देखो कि मैं कर क्या रहा हूं, ज्ञान क्या कह रहा है, और मैं कर क्या रहा हूं, मेरे में अभी भी क्या क्या कमियां है। बैठ के देखना पड़ेगा, और बैठ के देखना ही माना माइंड और इंटेलेक्ट कंप्लीटली फोकस्ड। जब कंप्लीटली फोकस्ड होंगे ये तीनों सामने नजारे दिखेंगे, और यहां से मतलब उसको आप साक्षी भाव से देखना आरंभ करेंगे आप। और जैसे साक्षी भाव से देखने के बाद जो ब्रजमोहन भाई कह रहे थे ना, कर्मातीत माना ही अधिकारी बन के अधीन नहीं। अब रास्ते में कोई घटना घटती है तो हर बार हम किसी में इंटरफियर करते हैं क्या? नहीं करते, साक्षी होकर देखते हैं। क्यों भैया? थोड़ा भी बीच में अगर एक शब्द भी बोला, कल को कोर्ट केस में फंस जाएंगे बिना मतलब के। तो कितना हम साक्षी होकर देखते हैं ना, तो यहां पर भी साक्षी होकर अपनी कमी और कमजोरियों को सामने देखना है। और फिर जो कहा कि वो नोक पर अग्नि थी बाण की, तो हम जिसको कहा कि कॉन्वेक्स लेंस पर, पहले ही दिन बताया था हमने कि सूर्य की गर्मी तो पड़ रही है पर रास्ते पे रखा कागज जलता थोड़ी है, लेकिन लेंस रख दिया, किरणें फोकस्ड हुई, तापमान वहां का बढ़ा, पेपर वहां का चला। तो कॉन्सेंट्रेट जब करेंगे एक साक्षी भाव से, हमारे सामने हमारी कमियां हमारी कमजोरियां सामने आएगी और अपनी मदद से ये नहीं जाएंगे, अपने से अब शिव बाबा से मैं कनेक्ट हो जाऊं, बाबा ये कमियां मेरे में अभी भी है और इन कमियों पर बाबा अब आपकी रेस पड़ जाए, तो फिर जाके ये कमियां क्या होगी? भस्म होगी। और जब ये भस्म होगी तो मैं तो हुई ना आनंद स्वरूप, मैं तो हुई शांत स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप क्यों नहीं अनुभव में आ रहा? किचरा मिक्स है ना, कचरा उसमें मिक्स है, लेकिन जैसे ही वो जलेगा मेरा आनंद स्वरूप मेरा प्रेम स्वरूप, मैं उसमें अपने आप स्थित हूं ना, तो हमारी बैटरी क्या हो गई? फुल चार्ज। तो जैसे कहा कि देव दीपावली के दिन तब कहते कि शिव जी ने इन त्रिपुर पर अटैक किया, विजय मिली, तब उसका नाम पड़ा त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरी, अरी माना दुश्मन। तो जो दुश्मन को मारने में सफल हो गया वो त्रिपुरारी। कौन सा दुश्मन था? मैं, मेरा और तेरा वाला, ये त्रिपुर थे। तो उसके पहले है चतुर्दशी, देव दीपावली के पहले है वैकुंठ चतुर्दशी, वो दिवाली के पहले है नरक चतुर्दशी। वो वाली दिवाली जब मना रहे तो पहले क्या है, और ये देव दीपावली जब मना रहे तो पहले क्या है? वैकुंठ चतुर्दशी। माना वैकुंठ के करीब जा रहे हम लोग। हाँ, वैकुंठ शब्द का ही अर्थ क्या है? जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा हमारे अंदर में नहीं। और कुंठा तभी हमारे अंदर में नहीं होगी जब हम कंपैरिजन करना छोड़ेंगे, जब हम कंपटीशन करना छोड़ेंगे, जब हम क्रिटिसाइज करना छोड़ेंगे, क्योंकि कुंठा का जन्म ही इसी से होता है। आप कंपेयर करो किसी से तो जाके ईर्ष्या उत्पन्न होगी, और कंपेयर ही नहीं किया तो ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठ रहा है। कंपटीशन करो ही नहीं तो ईर्ष्या आती नहीं। तो इसलिए कहा कि वैकुंठ में वही चलेगा जिसकी सारी कुंठाएं खत्म हो जाएगी। तो वैकुंठ चतुर्दशी क्या बताते हैं भक्ति मार्ग में, कि वो चातुर्मास करते हैं ना, खासकर जैनी लोग करते हैं चातुर्मास, जैसे हिंदू लोग भी करते हैं। तो उसमें आता है कि एक होती है देवशयनी एकादशी और एक होती है देव उठनी एकादशी, देव उत्थान है ना। तो देव शयनी के दिन क्या होते? कहते देवता विशेष करके विष्णु जी, और देव उठनी में विष्णु जी वो जो सोए थे वो जागते। अब कौन सी नींद सो रहे थे? वो सोचने की बात है, कौन सी नींद सो रहे थे और विष्णु जी क्यों? यहाँ पे अर्थ है कि भगवान जब धरती पर आते हैं, वो आत्मा जो भविष्य में विष्णु की है, मतलब वर्तमान में वो प्रजापिता ब्रह्मा, जो देवराज बाबा लेखराज, दादा लेखराज, और उसके साथ हम ब्राह्मण भी है ना, हमारा भी तो कोई ना कोई देव रूप है ना फ्यूचर में। तो होने वाली जो है आत्मा है देवता, जो जो आत्मा विष्णु भविष्य में बनने वाली, उसकी बात है ये। ये विष्णु थोड़ी सोएगा जाके, क्यों, सतयुग में तो हम फुल चार्ज है, उसको क्या सोने की जरूरत पड़ी है। तो ये जो बात है कि देवता या विष्णु खास करके सोते हैं, अर्थात जब भगवान धरा पर आते हैं, भगवान जब ज्ञान देते हैं, तो फिर हम आत्माएं क्या करते हैं, उसमें बताते हैं, उस सोने का नाम वो बताते हैं योग निद्रा। निद्रा नहीं बोलते उसको, योग निद्रा। और योग निद्रा का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना बाबा मम्मा की नींद भी योग निद्रा थी, बोलते हैं ना सभी, क्या अर्थ है उसका। हाँ, योग निद्रा का मतलब है शरीर सोए लेकिन आत्मा जागे। आमतौर पर जब हम रात को सो रहे होते हैं, हमें अपना भी होश नहीं होता है, मतलब आत्मा भी सोई है और शरीर भी सोया है। लेकिन योग निद्रा मतलब शरीर सोए आत्मा जागृत। और इसका अर्थ है ये कोई चार महीने लगातार सोता है क्या? छह महीने सिर्फ कुंभकर्ण सोता है तो कितनी बड़ी बातें बनाई जाती है उसके लिए, छह महीने। आज इंसान एक रात भी सोता है और अगर थोड़ी लेट उठता है, बारह, कुंभकर्ण है क्या तू? एक दिन के लिए उसको कुंभकर्ण का नाम देते, सोचो कोई चार महीने सोएगा क्या? तो उसका अर्थ क्या था कि योग निद्रा में गए, अर्थात वो योग तपस्या ऐसी की कि जिस योग तपस्या में शरीर तो जैसे कि जिसको बाबा कहते अशरीरी बन जाओ, आपको शरीर का भान ही नहीं रहे, नींद माना क्या, जहां शरीर का भान ही नहीं होता है। जिनकी कच्ची नींद होती तो उन लोग को कितनी परेशानी होती है, हाँ, थोड़ा सा किसी ने हिलाया नहीं, थोड़ी सी सुई गिरी नहीं, तो उनका सभी हो जाता है। तो नींद माना जिनकी अच्छी गहरी, शरीर का कोई भान ही नहीं है, और शरीर का तो छोड़ो अपना भी भान नहीं है। लेकिन योग निद्रा में शरीर का भान नहीं, लेकिन अपना आत्मा का भान है। तो वो अशरीरीपन का, वो विदेहीपन का अभ्यास किया है। और तब कहते कि जब ये चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के वो देव उठनी माना विष्णु उस योग निद्रा से उठे, और उसमें ये बताते हैं कि जब विष्णु जी शयन के लिए गए योग निद्रा के लिए, उस समय शिव ने, क्योंकि हम कहते हैं विष्णु जी पालनहार है, सृष्टि के पालनहार है, शिव जी ने आकर उसका जो कार्यभार है पालनहार का, सृष्टि का, वो कार्यभार अपने कंधों पे लिया, तब जाके उसने तपस्या की। और तभी तो देखो हर बार हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करावनहार करा रहा है। क्योंकि विष्णु जी का पालना का जो रोल है सतयुग से है, तो सतयुग से वो पालना करते, तभी तो हर आत्मा वहां पे, बाबा कहते हैं ना विष्णु के अपने दो ही तो बच्चे होंगे गिनती के, एक दो, लेकिन सारी प्रजा उसको क्या कहेगी, मात पिता के रूप में एक्सेप्ट करेगी। तो पालना का रोल वहां पे है जो सतयुग से चला आएगा कलयुग एंड तक, लेकिन कलयुग एंड तक जहां बात उसके भी हाथ से निकल रही है, तब शिव बाबा आते हैं और उसका जो कार्य है सृष्टि के पालनहार का, वो अपने जिम्मे पे लेते हैं और इसको कहते तुम अभी अपनी तपस्या करो। और उस तपस्या में जब वो पूरा सफल होता है, तो तब कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही क्या होता है, शिवजी पुनः उसको जो कार्यभार उसका लिया था, पुनः उसको सौंप कर कैलाश जाने के लिए तैयारी करते। और इसीलिए कहते हरिहर मिलन होता है इस दिन, भक्ति मार्ग में कहते हरि माना विष्णु और हर माना शिवजी हरिहर मिलन होता है कि वो शिवजी आके उसको कहते हैं अभी सृष्टि का कार्यभार तुम संभालो और मैं जाऊंगा अभी अपने कैलाश पर्वत। अर्थात ही तपस्या जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम फुल चार्ज वाली स्थिति में संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं शिव बाबा ने अपना रोल कैसे कम कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपन्न हो गए हैं। बस थोड़ी सी संपन्नता कौन सी बात की बाकी है कि मैं अकेला संपन्न बन के राज सत्युग में करूंगा क्या। तो जिनको साथ में लेके जाना है वो अभी संपन्न हुए नहीं है। तब कहा कि शिव जी की मदद से फिर बच्चों की भी, सारे देवताएं जो परेशान थे उसने तो जीत लिया, मैं मेरा तेरा को। ब्रह्मा जो होवनहार विष्णु है उसने वो जो चार महीने की चातुर्मास की तपस्या करके वो तो अपनी संपन्नता को प्राप्त कर गए, लेकिन अकेले से तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, अकेले से तो वैकुंठ नहीं बनेगा ना, उसके साथ और भी देवी देवता चाहिए। वो अभी भी एक राक्षस से पीड़ित है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है उसको। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये भट्टिया हमें समझना चाहिए कि भट्टिया जो हमें इतना सुंदर अवसर मिला है, हम इसमें खुद की बहुत गहराई से चेकिंग करें। समय हर पल आगे बढ़ रहा है। किसने सोचा था ये भी दिन आएंगे कि हम सिर्फ वीडियो द्वारा बाप दादा मिलन मनाएंगे? किसने सोचा था इतने फटाफट हो जाएगा? निकल गया ना समय, वो भी कहां। बाबा हर रोज आया करते थे, फिर दो तीन दिन के आड़ में आते थे, फिर महीने में कब आते थे, फिर सीजन चला अक्टूबर से मार्च तक आएंगे, उसमें भी संख्या महीने में दो बार, फिर महीने में एक बार, और फिर अभी, फिर पूरी सीजन में सिर्फ एक बार बाबा और बाकी वीडियो, अभी पूरा ही सीजन वीडियो। ये सब क्या इशारा है? क्या इशारा है? देव दीपावली बहुत जल्दी आ रही है, देव दीपावली बहुत जल्दी आ रही है, और बहुत जल्दी इस त्रिपुरासुर राक्षस का नाश हमें करना है। हमें मैं मेरा और तेरा को बहुत गहराई से अपने भीतर में चेकिंग करके साक्षी भाव से ऐसे देखेंगे तो अपनी गलतियां कभी भी नहीं, क्या होता है, भारी पड़ जाती है। वैसे भी इन जनरल भी आप देखो, सपोज फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया, किसी दूसरे के कारण से अगर रह गया तो हम, अच्छा सुना तेरे को कितने बार बोला है, कुछ भी तेरे को समझ नहीं है। और अगर हमारे हाथ से हो गया और कोई हमको याद दिलाए तो ठीक है ना, बंद कर दो ना। उस समय उसको भी तो हम बोल सकते थे बंद कर दो, नहीं, कितने बार बोला है, क्या किया है। अपनी गलती सहन नहीं होती, भारी पड़ती है बहुत। और कई बार इसलिए हमने देखा है, कई भाई बहने योग में अकेले में बैठना नहीं पसंद करते, क्योंकि बैठेंगे तो बातें याद आएंगी, बोलते हैं बातें याद आएंगी, तो बातें याद आएंगी तभी तो दिखेगा ना अभी भी कमियां है, तभी तो पता चलेगा कमियां है। नहीं तो वो कहा ना कि कैप्सूल में तो अंदर कड़वाट भरा है, ऊपर से सिर्फ मीठी लेयर लगी हुई है, तो हम तो सिर्फ या तो फिर मीठी लेयर लगाते रह रहे, बस मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, वो तो हूं ही, उसमें नो डाउट, पर उसमें जो मिक्सचरिटी हो गई है उसको तो मैं विजुअलाइज करूं, उसको तो मैं रियलाइज करूं, वो रियलाइज किए बिना खत्म नहीं होने वाली है। और वो रियलाइज चलो मैं कर भी लूं कि मेरे में कमियां है, और मैं ये भी समझ सकती हूं कि मैंने इस कमियों को मैंने कई बार देखा है मेरे में, और कई बार कोशिश की है पर फिर भी नहीं जा रही है, तब कहा कि शिव जी की मदद के बिना वो नहीं जा सकती है। अगेन मैपन, कि मैं ही सब कर सकता हूँ, नहीं। निमित्त, निमित्त भाव को अपनाना है। करण करावनहार वो है, हमने उसको कह दिया है, ये तन मन धन सब कुछ तेरा। जो ब्रिजमन भाई ने भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मेरी नैया तेरे हवाले। फिर जब नैया चल रही तो थोड़ी इधर मोड़ो ना, नैया जब पूरी उसके हवाले की तो वो सोचेगा ना किस डायरेक्शन में लेके जाना है, परंतु हम डायरेक्शन दे रहे हैं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं। तो नहीं, हमारे में कमियां जो भी है, हम अपनी मदद से सचमुच नहीं कर सकते हैं उसको खत्म। और तब कहा जाता है, बाबा कहता है, जो कुछ भी है मुझे बताओ, ये बोल के नहीं छोड़ दो, वो तो जाने जाननहार है। बाबा कहते, मैं तुम्हारे किचरे को रोज रोज देखता ना, तो मैं क्यों अपने आप को खराब करूंगा। बस तुम बताओ, तुम बताओ का मतलब तुमने रियलाइज किया मुझे देखकर क्या करना है, लेकिन तुम जब बताओगे माना तुमने रियलाइज किया है। और जब रियलाइज करके बताए, जैसे डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर को कह रही हूं, अकॉर्डिंगली डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि अब तुम ऐसा ऐसा करो, और फिर वैसा वैसा करते हैं तो रिलीफ मिलता है। ऐसे ही हम बाबा को सच्चे दिल से, हम जो हैं जैसे हैं, वो उसके सामने रखने की आवश्यकता है। ये भट्टियों का आयोजन इसीलिए किया जाता है। हाँ, उस दिन शशि दीदी भी आपसे कह रहे थे ना, आप लोग तो रिट्रीट सेंटर को बिलोंग करते हो, तो आप चाहे तो वहां कितनी भट्टियां कर ली होगी, फिर मधुबन में स्पेशल भट्टी क्यों। बाकी सेंटर चलो छोटे छोटे होते, वो सोचते हमको इकट्ठा होने की मार्जिन नहीं है, वो आते, लेकिन आप तो एक खुद ही एक रिट्रीट सेंटर को बिलोंग करते हो कि जहां चलो अपने सेंटर में नहीं रिट्रीट होती तो चलो उस ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जाएंगे, वहां भट्टी हो जाएंगी। वहां भट्टियां करने के बाद भी यहां की भट्टी क्यों करने आए हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। हम कहते ना यहाँ चार धाम है, चार धाम का मतलब क्या, दुनिया में भी जो चार धाम होते हैं ना, मतलब क्या होता है चार धाम का। एक तो वो चारों धाम जो होते हैं विष्णु से रिलेटेड होते हैं, नंबर टू वो जो धाम होते हैं ऊंचाई पर होते हैं, और वहां के वाइब्रेशन जो आपके हाउसहोल्ड के वाइब्रेशन है, जहां आप रहते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां वर्क प्लेस है, वहां के वाइब्रेशन से वो हाई क्वालिटी के वाइब्रेशन होते हैं कि जिस कारण से आप अपने घर से निकलकर, कारोबार से निकलकर जब चार धाम करने गए हैं, आपको एक अलग फीलिंग आती है। और आजकल तो चूंकि वहां पर भी सब कुछ होने लग गया है, तो आजकल वो भी फीलिंग भी कम हो गई। धाम माना ही जहां का वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो इसलिए यहां पर आपको चार धामों का यात्रा का मौका देते हैं, और उसके बाद यहां पर एक साथ बैठकर, क्यों क्यों, क्योंकि चार धाम से भी ऊंचा धाम कौन सा है, परम धाम। क्योंकि ये चार धाम में तो फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, नान भी किस भी आते, भले कम आते हैं यहाँ पे ज्ञान सरोवर में और शांतिवन में, तो प्रोग्राम नान भी किस के ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं होते, लेकिन विजिट करने तो आते ही है ना। तो यहाँ के फिर भी उन जो ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के अवतरण के, दादियों के तपस्या के जो वाइब्रेशन है, थोड़े बहुत उन वाइब्रेशन से थोड़े से डायल्यूट है, लेकिन परम धाम के वाइब्रेशन वहां नो डाइल्यूशन, बिल्कुल भी डाइल्यूशन नहीं है वहां पे। और इसलिए चार धाम के साथ बैठकर उस परम धाम में पहुंच जाओ कि जहां इस दुनिया का वाइब्रेशन बिल्कुल भी रिंचक मात्र भी नहीं है, और वहां चले जाकर, और वो तो तभी होगा जब शरीर भी स्थिर रहे, मन भी स्थिर रहे, बुद्धि भी स्थिर रहे, वो तो तब होगा। चलते फिरते में योग में तो बाबा कहते कि चलो निगेटिव से बचे रहोगे, लेकिन ऑलरेडी जो निगेटिव अंदर भरा पड़ा है उसको जो जलाना है उसके लिए तो कॉन्सेंट्रेटेड योग चाहिए, एकाग्र बुद्धि, एकांत, एक के अंत में खो जाओ, तब जाकर के वो पूरा होगा। तब कहा कि विष्णु जी तो पहले तैयार हो गए लेकिन बाकी तैयार नहीं हुए, तो जब देखा कि शिव जी ने त्रिपुरासुर को भी मार दिया तो अर्थात अन्य ब्राह्मण भी, मतलब हम सब भी तैयार हो गए, सब घर गए और आके हमने देव दीपावली मनाई। तो बहुत कम समय है, हाँ वो कहते हैं ना समय दिया जाता है लेकिन उस समय पर अगर तैयार नहीं होता है तो गाड़ी निकल जाएगी। तो हम तो इतने अच्छे भाग्यवान हैं कि हमको मधुबन में भी भट्टियों का चांस करने मिलता है, तो अवश्य ही हम पद्मापदम भाग्यशाली है, तो अवश्य ही हम गाड़ी से बिफोर रेडी हो जाएंगे, है ना। गाड़ी छूटे उससे पहले ही हम अपने त्रिपुरासुर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि साथ में जाकर उस विष्णुपुरी में, उस कृष्णपुरी में, उस वैकुंठ में उस विष्णु जी के साथ 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 आए, साथ साथ हमारा सब कुछ जो वादा है ना, कि हम पूरा ही कल्प क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे माने सतयुग के आदि से आएंगे, जो सतयुग के आदि से आएंगे वो वास्तव में देव दीपावली मनाएंगे। बाद वाले तो दीपावली तो शुरू हो गई है ना, है ना। तो अगर हमें सच्ची देव दीपावली मनानी है तो हम अपने त्रिपुरासुर को शिव जी के मदद से, माना शिव बाबा की मदद से, जो उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उसका हम सदुपयोग करें। तो आज आपका लास्ट डे है, तो जो कुछ भी है फिर भी अंदर में साक्षी भाव होकर चेकिंग कर लेना और बाबा को सब कुछ बताकर हल्के होकर जाना, और यहां से ये एक नियम पक्का करके जाओ कि वहां पर हम सप्ताह में या 15 दिन में या मास में या 2 मास में एक दिन का मौन अवश्य रखें। तभी तो एकांत होगा, तभी तो एकाग्रता होगी, तभी तो अपनी चेकिंग होगी, नहीं तो नहीं होता है। आप देखो सेंटर पे ज्ञान सुनने आते हैं ना हमारे भाई बहने जो जिज्ञासु होते, एक दिन आया आधा घंटा, फिर कारोबार में गया, फिर दूसरे दिन आया, फिर उतना उसका असर नहीं होता, इतना शिविर में आते फटाफट असर हो जाता है, क्योंकि रात दिन वही सुन रहे, बाकी जिम्मेवारियों से क्या है, फ्री है। तो उस एकांत का बहुत महत्व है। तो यहां से संकल्प करके जाओ, जैसा जैसा जिसका कारोबार है जितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो सप्ताह में एक बार, या तो 15 दिन में एक बार, या तो महीने में एक बार, हम अवश्य फुल मौन रखेंगे। इसलिए हम आप जब यहाँ आते हैं हम मौन के लिए कितना आपको अंडरलाइन करते हैं, परंतु होता क्या है, बहुत दिनों के बाद आते हैं, परिवार होता है, थोड़ा बहुत तो लेन देन हमको अंदर से होता है कि थोड़ी बहुत तो करें ना हम लेन देन, तो अवश्य ही बाबा भी इसकी छुट्टी दे देता है, लेकिन फिर अपने पुरुषार्थ के लिए अलग से जहां भी आप रहते हैं अवश्य ऐसा समय निकालेंगे, तो सब मिलकर बहुत जल्दी इस धरती पर देव दीपावली मनाएंगे। ओम शांति।
खुशियों